सूर्य उदय तक शेखर 7-8 मील चला आया था। एक बड़े से बाग में एक कीच भरे पोखरे के पास वह बैठ गया था। उसने बहुत कुछ सोच डाला था, स्त्री हत्या को से लेकर आत्महत्या तक सभी प्रकार के साधनों पर विचार कर चुका था। शेखर की मानसिक गलन किस सामर्थ्य ने, या शिक्षा के किस सिद्धांत ने, या किस अपर शक्ति की किस प्रेरणा ने उस दिन उसे बचाया, या वह नहीं जान सका। किस चीज़ किस दुर्घटना से बचाया, इसकी भी कल्पना वह नहीं कर सका। इतना अनुमान उसका अवश्य है कि उस दिन उसके भीतर जो जिज्ञासु असुर जागा था, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, कुछ भी जघन्य नहीं था, कुछ भी नीति भ्रष्ट नहीं था, क्योंकि वह असुर जघन्य और अनुकीर्ण नीति और अनीति के विचार से, विचार शक्ति मात्र से कहीं अधिक पुराना था। शेखर ने जब से कागज पेंसिल निकाली और एक प्रतिज्ञा लिखने लगा, माँ का कोई काम नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा जिसमें कि उसे बाध्य होकर भी मेरा रत्ती भी विश्वास करना पड़े, उससे बोलूँगा ही नहीं, कभी कोई पूछेगा तो भी मैं कहूँगा कि मेरी माँ ही नहीं है। और किसी उपन्यास में से निकलकर एक आवाज़ बार बार कहती जाती थी, विमाता है, विमाता है, विमाता है। एकाएक स्वयं उसके बिना जाने उसमें एक परिवर्तन होता है, उसके शरीर पर कुछ छा जाता है, रंग की तरह, लाल रंग की तरह, सूर्य की किरण एकाएक शीशे में से छन कर आने लगी हो। वह उस प्रतिज्ञा पत्र को फाड़कर गीली नरम भूमि पर पटक देता है और अपने बड़े बड़े बूटों से कुचलता है, कूटता है, जब तक कि टुकड़े मिट्टी के नीचे दब नहीं जाते, अदृश्य नहीं हो जाते। मैं क्यों हार मानूं, क्यों विश्वास नहीं करता, ना करे, मैं योग्य हूँ, योग बनूंगा, रहूँगा, इस चोट को चुपचाप सहूँगा, इस अपमान को पीऊँगा और दिखने नहीं दूंगा, और सारे संसार का विश्वास और आदर पाकर उसे माँ के मुंह पर पटक दूंगा और कहूँगा, या देख, मैं इसे ठुकराता हूँ। अपनी विकसित होती हुई आत्मा में एक आग छिपा कर, एक प्रशांत विद्रोही बनकर शेखर घर लौट आया। अगर शेखर ने मौत नहीं मांगी तो इसलिए कि उसकी दशा पहले ही मौत से बुरी थी, वह मौत मांगने लायक भी जीता नहीं था। प्रेम की और त्याग की वृदावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा किसी ने नहीं की, लेकिन शेखर के जीवन को उन दिनों इन्हीं दो शक्तियों ने संभव बनाया। घृणा ने ही उसे इतनी शक्ति दी कि वह सब कुछ खोकर भी संसार को ललकारे, और वासना ने उसे जगाया कि वह चोट का सामना करे जो उसके हृदय को लगी है। शेखर पिता, माता, सरस्वती, शारदा और अंत में स्वयं को, अपने को खो चुका था। इतना अपंग होकर वह इस लायक नहीं रहा था कि वह कुछ और भी सोच सके, लेकिन धीरे धीरे इन दो विषों के प्रताप से उसमें जान आने लगी। स्वस्थ आदमी को शराब पागल कर देती है, लेकिन बेहोश आदमी को सुस्त करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। कविता और संगीत शेखर के लिए निरर्थक हो गए थे। अपने अत्यंत प्रिय रिकॉर्ड सुनकर उसे तनिक भी सुख नहीं हुआ, पर क्रोध में उन्हीं रिकॉर्डों को पटक कर और तोड़कर उसे कुछ थोड़ी सी शांति मिल गई थी। वह निष्प्राण सा अपने कमरे में या बाहर या कहीं भी, सब स्थान उसके लिए एक से थे, बैठा रहता और बस बैठा रहता। कोई उसे कुछ कहता तो वह सुनता ही नहीं था, लेकिन कभी कभी उसके पास कहीं कोई और बातें कर रहे हो तो वह उसे सुन जाती थी। माता पिता बैठे कुछ बात कर रहे थे, शेखर अलग बैठा था। एकाएक उसे ध्यान आया कि उसने उनकी बात सुन भी ली है, समझ भी ली है। शेखर के पिता तभी दौरे से आए थे। माँ उनकी लाई हुई वस्तुओं की आलोचना कर रही थी। मदुरा की एक महीन धोती की बात करते हुए पिता ने कहा, वह मैं सरस्वती के लिए लाया हूँ। तुम कहती थी ना कि एक उसे भेजती है। माँ बोली, वाह, उसे क्यों भेजनी है ऐसी सुंदर धोती? वैसे तो रस्म पूरी करने के लिए भेजनी है, मामूली धोती से काम चल जाएगा। वह मैं आप ना पहनूंगी। कई दिन तक शेखर इस ताक में रहा कि किस तरह वह साड़ी उसके हाथ लगे तो वह उसे जला डाले या फाड़ डाले, माँ पहन ना पाए। पर वह जाने कौन से बक्स में धर दी गई, फिर कभी नहीं निकली, ना माँ ने कभी पहनी, और शेखर ताक में ही रह गया। शेखर वैसे ही बैठा था और गीत गोविंद के दो पद धीरे धीरे गुनगुना रहा था, इतना अन्य मनस्क कि वह स्वयं भी नहीं जानता था। लाइन है, लति वल्त कंगलता परिसलिन कोमलमयी समीरे मधुकर निकर करिम्बती कोकिल कुंजित कुंज ककुटीरे। उसने कई बार पिता को ये पद गाते सुना था। इनका अर्थ वह नहीं जानता था, पर इनके शब्दों में कुछ ऐसा माधुर्य था कि उसे पहली बार सुनने पर ही याद हो गए थे, और वह बहुधा उन्हें दोहराया करता था। तभी पिता आए और शेखर को गाते सुनकर बोले, यह तुमने कहाँ से पढ़ा? मुझे याद है। और भी कोई याद है? हाँ, कौन सा? धीरे समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली गोपी। पिता ने टोक कर क्रुद्ध स्वर में पूछा, तुमने गीत गोविंद पढ़ा है? नहीं, फिर ये कहाँ से सीखा? आप गाया करते हैं, मैंने सुनकर याद कर लिए। बहुत दिनों से पिता ने शेखर को पीटा नहीं था, वे शायद उसके वयस्क समझने लग गए थे, लेकिन उस समय उन्हें ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने तीन चार तमाचे उसके लगा दिए। पता नहीं हो क्या गया था, सब लड़कों को गंदी गंदी बातें ही सीखते हैं। शेखर ने मन ही मन निश्चय किया कि कैसे भी हो गीत गोविंद अवश्य पढ़ना होगा। खोद खोद कर उसके पिता की संस्कृत पुस्तकों में से गीत गोविंद निकाल लिया। सटीक पहले तो वह सारी पुस्तक पढ़ गया। वह उसे इतनी मधुर लगी कि अधिकांश उसे कंठस्थ भी हो गई। फिर उसे यह जानने की चिंता हुई कि पिता क्यों क्रुद्ध हुए थे, और तब वह टीका पढ़कर पुस्तक समझने की चेष्टा करने लगा। टीका संस्कृत में थी, पर कुछ मूल कुछ टीका और कुछ अटकल से वह अर्थ करता हुआ बढ़ने लगा। वह समझा और नहीं समझा, उसमें एक उद्वेग एक जुगुप्सा भरने लगी, और उन्हें नहीं समझ आया कि क्यों। पढ़कर उसे ग्लानि होती, ग्लानि से वह और पढ़ता, कृष्ण से उसे घृणा होती, घृणा में वह अपने कृष्ण के स्थान में रखता, और अनवरत उसकी आत्मा अपने आप से ही पूछती जाती, क्यों क्यों क्यों। उसकी आँखों के आगे असंख्य चित्र नाचने लगे, असंख्य भूली हुई बातें, संकेत प्रकाश और अंधकार के छोटे छोटे पुंज, पिता माँ रसोईया नौकरानी अति काश्मीरिन आया जिन्निया, फिर अमृतसर के कन्हैया के कटेरे का एक दृश्य। वह परीक्षा देकर लौट रहा था, रास्ते में अमृतसर देखने के लिए उतरा। साथ लाहौर से भेजा हुआ एक व्यक्ति था जिसे अमृतसर दिखाने का काम सुपुर्द किया गया था। स्वर्ण मंदिर जालियांवाला इत्यादि स्थान देख चुकने के बाद साथी ने कहा था, अब एक नई चीज देखें, और शेखर को साथ लिए हुए उसे कटरे में घुस आया था। शाम का वक्त था, कटरे में निचली मंजिलों में से कुछ दुकानें खुली थी, बजाजों की, हलवाइयों की, पकौड़ी वालों की, और जहाँ जहाँ गजरे वाले बैठे चिल्ला रहे थे। पर बाजार की शोभा थी, ऊपर की मंजिलें वहाँ प्रकाश की अनिवस्त और भोली आँखों को लगा कि इतनी विपुल सुंदर सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा। एकाएक वह एक जगह ठिठक गया। ऊपर से एक अत्यंत मुस्कुराता हुआ एक मुख उसकी ओर देख रहा था। शेखर देखता रहा, स्थिर अपलक स्तब्ध विस्मय में डूबा हुआ देखता रहा। इतना सौंदर्य उसकी भोली आंखों ने भी देखा कि आंखों के आसपास नीले से वृत्त बने हुए थे, लेकिन उसके मन ने कहा कि वह शायद काजल के आधिक्य से है और फिर वहाँ आलोचना करना संभव कम था उसके लिए। वह स्वच्छ आनंदित विस्मय इतना सौंदर्य, लेकिन उसके साथी ने उसकी ओर देखा, एक कर्कश भद्दी हंसी हंसकर उसे खींचते हुए कहा, ये साली बच्चे बूढ़ों का भी ख्याल नहीं करती। और अभी शेखर चलता हुआ इस वाक्य का अभिप्राय सोच ही रहा था कि साथी ने फिर कहा, जिम्मेदारी है नहीं तो, और चुप हो गया। फिर पिता के संग्रह में चूड़ी से देखा हुआ छिन्न मस्ता का एक चित्र, जिसके अधोभाग को एक कागज की पट्टी लगाकर पिता ने ढका हुआ था, शेखर ने उघाड़ कर देखा था। शेखर मानो कांपने लगा, उसका जी मिचला उठा, उसे लगा कि असंख्य बिच्छू उसे काट रहे हैं, लेकिन उनके डंश में विष नहीं मधु है, इतना मीठा था वह डंश। अति की आयु कोई 20 वर्ष की थी। अपने देश और जात की स्त्रियों की तरह वह एक वसना रहती थी। एक रंग बिरंगी चारखानी धोती से वह सारा शरीर ढकी रहती थी। सिर उसका खुला था और बहुधा एक कंधा भी उघड़ा रहता था। उसका बदन साधारण था, ना लंबा, ना नाटा, ना दुबला, ना बहुत भरा हुआ, लेकिन वह खूब स्वस्थ थी और उसके शरीर में रक्त खूब थे। उसके बाल कुछ मोटे और खूब घने काले थे। माथा बहुत छोटा, भौंहें भी छोटी पर काली, नाक भी छोटी पर कुछ उठी हुई सी और थोड़ी पीछे हटती हुई सी थी। यूँ कहा जा सकता है कि उसके चेहरे पर कुछ बड़ा था तो उसकी आंखें ही, बाकी सब कुछ छोटा था। वह सुंदर नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसमें एक चंचल, एक आकर्षण था जो दृश्य होते ही उसकी गुंजाइश ही नहीं देने रहता था। कोई उसकी सुंदरता या असुंदर की विवेचना करने की ओर जाए, वह सदा हंसती रहती थी। हर एक बात में, हर एक के साथ हंसी ही उसका नियम और साधन था। शेखर के साथ बात करते भी कोष्ठ में या बात ना करते भी शेखर को देखकर कोष्ठबंद वह हंसा करती थी। कभी-कभी शेखर को लगता था उस हंसी में कुछ गंभीरता है, कुछ अभिप्राय है। वह समझ नहीं पाता था कि क्या, लेकिन सदा यह विचार आते ही वह अशांत और उद्विग्न हो उठता था। कभी जब वह अति के पास कहीं होता, तब अति काम में ऐसे लगी रहती जैसे उसे मालूम ही ना हो कि वह कहाँ है। वह कभी तो देखता रहता और उसे चौंकाने के लिए कोई शब्द करता, लेकिन अति भी चौंकती नहीं, शब्द सुनकर अपनी धोती ठीक करके उसमें सिमट जाती और मुस्कुराती हुई काम करती जाती। एक दिन वह शेखर के कमरे में बुहारी दे रही थी, जब शेखर बाहर से आया, अति के पीठ द्वार की ओर थी और वह झुककर बुहारी दे रही थी, इसलिए उसकी धोती की छोर पीठ पर से फिसल कर गर्दन पर जा रुकी थी और पीठ उखड़ी हुई थी। शेखर वह खड़ा देखने लगा और यह जानकर कि अति को उसके आने की खबर नहीं, वह धीरे धीरे उसके पास आने लगा। पास आकर वह सोचने लगा कि कैसे वह उसे चौंकाए, कोई शब्द करे या अति का पीठ गुदगुदा दे। गुदगुदा देने का निश्चय करके वह आगे झुका ही कि उसने देखा अति दबे होंठों से मुस्कुराती जा रही है। उसे शेखर को वहाँ होना मालूम है। उसे चोट सी पहुँची, उसका बड़ा हुआ हाथ रुक गया। अति ने झट से सीधा होकर अपनी पीठ और कंधे खूब अच्छी तरह से ढक लिए और छोर वाला कंधा शेखर की ओर करके उसके ऊपर अपनी थोड़ी सटाकर हंसने लगी। मेरे आने का इसे पता है, इस विचार से जहाँ शेखर को चोट पहुँची, वहाँ एकाएक बड़ी तीखी उत्तेजना भी मिली। जानकर ही तो उस वह वैसे खड़ी थी। शेखर ने बढ़कर उसकी धोती का छोर पकड़ लिया कि उसे घींचकर पहले से ही उघाड़ दे। अति जैसे अपने बचाव के लिए उसकी ओर को कुछ झुक गई। उसका सिर शेखर के मुंह के पास आ गया। एकाएक शेखर उसका आंचल छोड़कर पीछे हट गया। दोनों हाथों से पकड़े हुए एक छोटे से सिर और नीम के सौरभ की याद उसके आगे नाच गई। शेखर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे की वाल उसने धड़ाक से बंद कर दिए। शेखर के घर से कुछ दूर पर दूसरा घर था, जिसके बाहर धूप में आराम कुर्सी पर प्रायः एक 18-19 वर्ष की एक लड़की लेटी रहती थी। नाम उसका शांति था। शेखर ने सुना कि वह एक तपेदिक से आक्रांत थी और तभी वैसे पड़ी रहती थी। शेखर ने यह भी सुना है कि वह बहुत दिन जिएगी नहीं, और जब से उसने यह सुना तब से अक्सर सबकी आंख बचाकर वह अपने घर के एक ओर खड़ा होकर शांति की ओर देखा करता था। कभी उसके मन में दया उत्पन्न होती, कभी सहानुभूति, कभी बहुत खिन होने पर वह शांति से ईर्ष्या भी कर लेता कि उसे जीवन से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। शांति कभी आंख उठाकर उसकी ओर देख लेती तो वह तत्काल वहां से हट जाता। उसे डर था कि उसे देखता पाकर वह वहां बैठना ना छोड़ दे। एक दिन शांति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। शेखर सोच ही रहा था कि वहां से हट जाए या तनिक ठहर जाए कि उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाया और शायद पुकारा भी। शेखर ने एक बार सनसक नेत्रों से अपने घर की ओर देखा, फिर चला गया। शांति ने अपनी कुर्सी के पास फैली हुई घास की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। शेखर बैठ गया। बैठकर उसने देखा वह अपने घर से दिख नहीं सकता। एकाएक कनेर की झाड़ की ओट उसे प्राप्त है। वह कुछ और आराम से बैठ गया। शांति ने कहा, तुम्हारा नाम शेखर है ना? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे घर की कई बातें यहाँ से सुन लेती हूँ। तुम्हारी माँ बहुत जोर से बोलती है। शेखर चुप रहा। थोड़ी देर बाद शांति फिर बोली, तुम क्या देखा करते हो? शेखर झेप गया, सिर झुकाकर अपने पैरों के नाखून गिनने लगा। शांति ने कुछ कोमल स्वर में कहा, बताओ क्या देखा करते हो? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो भाग क्यों जाते हो फिर? इसलिए मैं कई बार उधर नहीं देखा करती। शेखर चुप रहा। बताओ भी, इतना शर्माते क्यों हो? मेरे पास एक चित्र है, उसे तुम इतनी मिलती हो, कहकर शेखर रह गया। कौन सा चित्र? लाता हूँ, कहकर शेखर उठा और घर से चित्र लेता आया। या देखो। शांति ने चित्र ले लिया और देखते ही बोली, अरे या तो मेरे पास भी है। सच? या कहकर शेखर अपने स्थान पर बैठ गया। चित्र रोजेटी का बनाया हुआ बिएटा बिएट्रिक्स था, जिसे प्राय ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं। शांति ने कहा, किस दिन यह ग्लोरी मेरी भी होगी, और एक विदासपूर्ण हंसी हंस दी। शेखर एक उदास सा हो गया, फिर बोला, इसे ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं, वह गलत नाम है। असली नाम है बिएटा बिएट्रिक्स, यानी बिएट्रिक्स की समाधि। रोजिट्री की स्त्री एक बार बेहोश हो गई थी, उसी का चित्र उसने बनाया था। शांति ने कहा, अच्छा, मानो कह रही हो तुम बहुत कुछ जानते हो। थोड़ी देर बाद शांति बोली, कुछ बताओ, कुछ बात सुनाओ, मैं यहाँ अकेले पड़ी रहती हूँ, कभी कभी आ जाया करो ना। तुम बातें किया करना, मैं सुनूंगी, मुझ में सुनने की पेशेंस बहुत है। आया करूंगा, लेकिन सुनाऊंगा क्या? कुछ भी, कुछ अपनी बात, नहीं तो कहानी या कोई कविता ही। शेखर चुपचाप सोचने लगा। थोड़ी देर उसे देखते रहकर शांति ने कहा, कुछ ना सूझे तो चुपचाप ही बैठे रहो, थोड़े ही दिन तो हैं। चौंक कर, क्यों? हाँ और क्या, फिर तो मैं कितनी अकेली होऊंगी। शेखर इतना उदास हो गया कि चुपचाप वहीं बैठा रह गया, कुछ बोला नहीं और कोई आधे घंटे बाद घर लौट आया। शेखर बहुत बार शांति के पास जाने लगा। कभी वह कोई कहानी या कविता की पुस्तक ले जाता और उसे सुनाता, कभी चित्रों की किताबें ले जाता, या कभी है चुप ही बैठा रहता। उसे लगता वह शांति का रक्षक है, किंतु शांति का शरीर नहीं है, एक शिशु आत्मा है और वह उसका फरिश्ता। कवि शांति उसकी बात सुनते सुनते कुर्सी की पीठ पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेती। तब वह रुक कर कुछ देर उसके सफ़ेद मुख की ओर देखता रहता, फिर चिंतित स्वर से पढ़ने लगता, मानो उसके पढ़ते रहने से शांति के प्राण भी सुनते रहने के लिए अटके रहेंगे। उसके पढ़ना छोड़ते ही वह उड़ जाएंगे। एक दिन शांति ने कहा, लाओ आज मैं कुछ सुनाऊँ, तुम सुनो। शेखर उस दिन उस समय अंग्रेजी की कविताओं का एक संग्रह लिए था, वह उसने शांति की ओर बढ़ा दिया। शांति कुछ देर पन्ने उलटती रही, फिर बोली, हाँ या सुनाती हूँ, मुझे जवानी याद है। उसने किताब बंद करके गोद में रख ली, लेट कर सिर पीछे टेक कर आंखें मूंद कर धीरे धीरे पाठ करने लगी। उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, टकरा 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 तट की ठंडी धसूर चट्टानों से ओ सागर, काश की मेरी वाणी भी वे विचार प्रकट कर सकती जो मेरे भीतर उठते हैं। मछुए का एक बेटा सुखी है कि वह अपने बहन के साथ हंसता खेलता है, नाविक सुखी है कि वह खाड़ी में अपनी नौका में बैठा गाता है, और महाकाव्य जहाज पहाड़ी के नीचे बंदरगाह की ओर बढ़े चले जाते हैं। और फिर रुक गई। शेखर कुछ देर प्रतीक्षा में रहा कि आगे बढ़ेगी। कोष्ट में आगे की पंक्तियां शेखर को याद थी, लेकिन वह चुप ही रही और शेखर भी कुछ बोल नहीं सका। शेखर शांति की कंठ की ओर देखने लगा, कितना श्वेत चांदनी की तरह शुभ्र था वह और त्वचा मानो पारदर्शी थी। शेखर को उसमें नाड़ियों की स्पंद युक्त नीली नीली रेखाएं साफ दिख रही थी। सारे संसार की कितनी उपेक्षा है उस स्पंदन में, कितनी लापरवाही अपने ही में, कितनी तन्मयता। इस समय वह कितनी संपूर्णता उस चित्र जैसी लग रही है। प्रत्येक स्पंदन उसे लिए जा रहा है मूर्छा की ओर, समाधि की ओर, या कि ग्लोरी ऑफ डेथ, मृत्यु का गौरव। एकाएक शांति ने आंखें खोली। शेखर को वह खोलना ऐसा चेष्टाहीन लगा मानो अपनी आप खुल गई हो, और एक क्षीण कोमल स्वर ने कहा, क्या देख रहे हो। वह अनपेक्षित था, लेकिन इतना कोमल था कि शेखर चौंका नहीं। उसने रुकते हुए स्वर में कहा, शांति मैं तुम्हें छू सकता हूँ। शांति ने आंखों से ही अनुमति देते हुए कहा, आओ। शेखर ने पास जाकर बड़े आदर से डरते डरते अपने एक हाथ शांति की ठोड़ी के नीचे कंठ पर रख दिया। रख नहीं दिया, उंगलियों से कंठ छुआ भर शांति ने सिर आगे झुकाकर उसकी उंगलियां थोड़ी सी दबा ली, बहुत ही हल्के कोमल कृतज्ञ से दबाव से। शेखर खड़ा रहा। शेखर एक हाथ पर टफ से एक बड़ा सा आंसू गिरा और हाथ के नीचे कंठ के एक बार कुछ कांप गया। शेखर के हाथ पर दबाव नहीं था, पर वह हाथ नीचे छुड़ा सका। थोड़ी देर बाद शांति ने सिर उठाकर फिर पीछे टेक लिया। शेखर ने हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चला गया। उसे लगा कि उसके बाद कुछ होना ही हो नहीं सकता। रात को स्वप्न में शेखर ने देखा कि शारदा तपेदिक से आक्रांत होकर मर रही है। वह उसके पास गया है और शारदा उसे कह रही है, तुम मुझे भूल गए ना, नहीं तो मैं मरती। और उसके बड़े बड़े गर्म आंसू टप टप शेखर के हाथ पर झर रहे हैं। शेखर जाग कर उठ बैठा। उसने देखा उसका सारा शरीर कांप रहा है और अंधकार मानो उसे काटने लगा। उसने जल्दी से उठकर लैंप जलाया और उसे मेज पर रख कर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखता हुआ बैठ गया। सप्ताह भर वह शांति को देखने नहीं गया। दिन भर अपने कमरे के किवाड़ बंद किए बैठता रहा। उसने सुना कि शांति को तेज बुखार हो गया है। उसकी माँ जाकर शांति को देख भी आई और सहानुभूति भी प्रकट कर आई, लेकिन वह कमरे से नहीं निकला। अति अब उसके सामने नहीं आती थी, ना वह भी कभी अति के सामने सामना करता या उसे कुछ कहता था। अब शेखर यह भी देखता था कि कभी सामना हो जाने पर अति एक तिरस्कार या उपहास भरी हंसी लिए रहती है, उसकी दृष्टि में एक अवज्ञा, एक ताना सा रहता है। इसलिए वह उस दिन अपने कमरे में किवाड़ बंद किए हुए बैठा इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अति वहाँ आए। अति ने किवाड़ खोलकर भड़बड़ाते हुए भीतर आकर कर्कश और तानेश्वर में कहा, तुम्हारी वह शांति मर गई है। साथ ही बाहर दूर से आई चीखने की आवाज़। अति थोड़ी उठाए उठाए हुए बाहर निकल गई। या शेखर को तीन चार मास बाद मालूम होना था कि अति अपने घर चली गई है शादी करने के लिए, कि उसे नौकरी से बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। शेखर के मन में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि वह शारदा से प्रेम करता है तो शारदा के अतिरिक्त किसी भी स्त्री का विचार भी उसे नहीं होना चाहिए। और यह भी स्पष्ट दिख रहा था कि ये विचार बराबर उसके मन में आते रहे हैं। तब क्या वह शारदा से प्रेम नहीं करता? इस विचार मात्र से उसका हृदय द्रो कर उठता था। वह चाह उठता था अपने समूचे व्यक्तित्व से इस विश्वास को पा लेना, अपने में धारण कर लेना कि वह शारदा से केवल शारदा से प्रेम करता है, या फिर दूसरों के विचार मन में आने देना पाप नहीं है। तब क्यों वह उत्तेजना और ग्लानि, क्यों वे अस्पष्ट मांगे और उनसे उत्पन्न जुगुप्सा? क्यों उसी के मन में यह भाव रहता था कि वह पाप कर रहा है? पर शांति को जो आकर्षण था वह पापमय था। क्यों, क्या उसके पास अंत समय में ना जाना ही पाप नहीं हुआ? उसने शांति को छुआ, छूने की अभिलाषा प्रकट की। क्या वह शारदा के प्रति विश्वासघात था, या शारदा की आड़ लेकर उसके पास ना जाना ही शारदा के प्रति अन्याय था? क्यों वह स्वप्न? शेखर का मन रुक गया। इससे आगे उसने कुछ पूछा नहीं, लेकिन स्वयं शेखर को स्पष्ट जान पड़ रहा है था कि उसके मन की गति बंद नहीं हुई है। वह एक बड़े भारी प्रश्न की छोर पर है, जिसे वह पकड़ने की चेष्टा में है। व्यक्तिगत से वह एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाकर व्यापक में जाना चाहता है। पर सतीत्व है क्या चीज? शेखर फिर सदा की भांति पुस्तकों की शरण गया। उसने एक किताब देखी हुई थी, व्हाट ऑल मैरिड पीपल शुड न्यू। यही किताब उसने निकाली और घर से बाहर जाकर एकांत स्थल में बैठ पढ़ने लगा। वह जानता था कि यह पुस्तक उसके लिए नहीं है, लेकिन अनुभव से उसने यह भी सीख लिया था कि जो बातें वह जानना चाहता है वह उन्हीं पुस्तकों में है जो उसके लिए नहीं है। ज्ञान में ना सुख है ना जुगुप्सा, लेकिन पढ़ते हुए शेखर को एक जुगुप्सामयी सुख और एक सुखमयी जुगुप्सा का अनुभव हो रहा था। वह कारण दोनों का नहीं जानता था, लेकिन एक विचित्र कंपकपी, एक रोमांच सा उसके कंधों से लेकर भुजाओं और पीठ को कांपता हुआ पैरों तक चला जाता था, और उसके अवयवों में जहाँ तहाँ एक विवश अनियंत्रित स्पंदन या फड़कन उठ रही थी। वह जो कुछ पढ़ रहा था सब ठीक ठीक नहीं समझ रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ समझता जा रहा था और अधिकाधिक व्यग्रता से पढ़ता जा रहा था। एक एक अध्याय, निर्वाचन, वर में क्या गुण देखने चाहिए, कन्या में क्या गुण देखने चाहिए, दोष जिनसे बचने चाहिए, वरण, कोर्टशिप, विवाह, संयम और तब गर्भाधान। तब बिजली की कौन से एक क्षण में शेखर के हाथ से किताब छूट गई, धरती उसके पैरों के नीचे से घिसक गई, आंखों के आगे अंधकार छा गया, दुनिया के आगे खुल गई। वह सब कुछ समझ गया जो अस्पष्ट संकेत उसने देखे थे, जो पुकारे सुनी थी, जो उत्तेजनाएं पाई थी, जो दंश सहे थे, सब सुलझ गए। माँ का छाती पीटना, पिता का क्रोध, नाचती हुई जिन्निया की नंगी टांगे, अमृतसर की वेश्या, रसोइया का व्यंग्य, अति का नंगी पीठ, गीत गोविंद के पद, 8 मासा बच्चा, छिन्न मस्ता के नीचे पुरुष और प्रकृति का चित्र, कविता का सुख है और हाँ, सरस्वती की लज्जा, शांति के आंसू, सावित्री का मौन, शशि का आग्रह, शारदा का कंपन, सब एक ही सूत्र में गूंद गए, स्पष्ट हो गए, समझ आ गए। इन सब की गति एक ही ओर है, एक ही घृणित पाप कर्म की ओर, जिसे उसके माता पिता ने किया है, शारदा के माता पिता ने किया है। सृष्टि के आरंभ से प्रत्येक माता पिया पिता किया करते हैं। यही है प्यार है, यही जिसके लिए वह शारदा को चाहता था। वह अखत्य घृणित अचिंतन्य भ्रष्टाचार अच्छा है कि तुम मर जाओ, अच्छा है कि शारदा मर जाए, अच्छा है कि सारा संसार मर जाए, यदि यही होना है तो। यह है ज्ञान, यह है सत्य वास्तव, यह है यथार्थता, यह है ज्ञान। इसके आगे अंधकार का एक पर्दा है, उस पर्दे के नीचे एक गति है, हलचल है, संघर्ष है, लेकिन वह व्यक्ति का इतना अभिमन्तम अंग है कि उसे कहना, उसे सोचना भी घोर अश्लीलता है। उस पर्दे के नीचे ही नीचे भाटा भी उतर गया। जिस दिन शेखर ने कॉलेज जाने की तैयारी में पुस्तक देखते हुए रोमा रोला का यह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है, उस दिन उसने सिर उठाकर देखा कि वह समुद्र पार कर आया है, कि वह संपूर्ण है, मुक्त है और पुरुष है।